धवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो
वच्छायाणं
नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धिये लद्धसौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भडारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इस षटखंडागम का यह चौथा खंड है, इसका नाम है वेदना, और उसमें कृति अनुयोग द्वार की अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। इस नौवे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 162 पर हम आ गए, 162। मति ज्ञान के विस्तार से चर्चा होने के बाद अभी श्रुत ज्ञान की बात चल रही है, और श्रुत ज्ञान दो प्रकार का बताया गया था, अंग और अंग बाह्य। ये जीव के पर्याय की बात है, उसी को उस नाम से पहचानेंगे, और उसमें निमित्त वो शब्द और ग्रंथ वगैरह होते हैं, परंतु उसको द्रव्य श्रुत कहने में आता है। अब यहाँ कल ये शंका पूछी गई थी 162 पेज पर ऊपर, जो शब्द और उसकी स्थापना की श्रुत संज्ञा कैसे हो सकती है। शब्द नहीं, जो बोला जाता है, सुना जाता है, और स्थापना का अर्थ हो तो जो अक्षरात्मा लिपिबद्ध किया जाता है, तो लिपि में हम अक्षरों की उसमें स्थापना की है ना, उसके ध्वनियों की स्थापना की है, तो उसको हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भाषित होता है। तो कहते उसको भी श्रुत क्यों कहते हैं, ये उनका प्रश्न है। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करने से वो निमित्त है, और यहाँ कार्य हुआ जानने का, तो कारण में वो जानने रूप कार्य का उपचार करने से शब्द या उसकी स्थापना की श्रुत संज्ञा बन जाती, उसको भी हम श्रुत कहते हैं। अथवा जो जाने जाते हैं वे अनुगम है, इस निरुक्ति के अनुसार। देखो ये अनुगम यानी वो तो जानन रूप कार्य हो रहा है, त्रिकोटि स्वरूप, त्रिकोटि यानी द्रव्य गुण व पर्याय स्वरूप, यहाँ एक कॉमा लगाना, पाखंडियों के अविषय भूत। पाखंडी इसको नहीं जानते हैं, मिथ्या दृष्टि इसको नहीं जानते हैं, अविभ्राक स्वभाव संबंध अर्थात कथनचित तादात्म्य से सहित जात्यंतर स्वरूप को प्राप्त प्रमाण के विषय होने से दुर्नयों को दूर करने वाले, ये पूरा हम विशेषण पढ़ेंगे, फिर किसकी बात चल रही वो भी देखेंगे, अपनी नाना रूप यानी अनेक रूप अनंत पर्यायों की प्रतिपक्ष भूत असत्ता से सहित और उत्पादन व्यय द्रव्य स्वरूप से संयुक्त उत्पादन क्यों कहा उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप से संयुक्त ऐसे छह द्रव्य अनुगम है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ छह द्रव्यों को ही अनुगम कह रहे हैं। देखो जरा हम पीछे चल के देखते हैं, 141 पृष्ठ पर अनुगम किसको कहा था, पेज नंबर 141 नीचे से जो पैराग्राफ है ना शंका के ऊपर का, वहां क्या कहा था, अनुगम के अर्थ को अभी बताते हैं। अनुगम का अर्थ क्या है वो देखते हैं। जहां या जिसके द्वारा वक्तव्य की प्ररूपना की जाती है, वक्तव्य हमने देखा था, स्व समय वक्तव्य, पर समय वक्तव्य वगैरह, तो उसकी प्ररूपणा जिसके द्वारा की जाती है वह अनुगम प्रमाण कहलाता है। अधिकार संज्ञा युक्त अनुयोग द्वारों के जो अधिकार होते हैं उनका अनुगम यह नाम है। जैसे वेदना अनुयोग द्वार के पद मीमांसा आदि अनुगम, ये समझेंगे, कालानुगम, स्पर्शनानुगम, भावानुगम, उसको अनुगम कहते हैं, उस अधिकारों को अनुगम कहते हैं। वह अनुगम अनेक प्रकार का है। अथवा अथवा कह के दूसरी एक पॉसिबिलिटी, जिसके द्वारा जीवादिक पदार्थ जाने जाते हैं वह अनुगम प्रमाण कहलाता है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं देखो, यहाँ तो जो छह द्रव्य है उसी को अनुगम कहा कि जो जाने जाते हुए अनुगम, वहां तो जिसके द्वारा जाने जाते उसको अनुगम कहा था, यहाँ जो जाने जाते उसको अनुगम कहा। अलग अलग अपेक्षाओं से कथन आता है वो, उसकी ऐसी अगर निरुक्ति करते हैं तो ये द्रव्य गुण पर्याय को हम अनुगम कहे, त्रिकोटि स्वरूप है ना, ये छह द्रव्य कैसे त्रिकोटि स्वरूप है, यानी वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु है। कैसे है, पाखंडियों के अविषयभूत छह द्रव्यों के ये विशेषण बता रहे, पेज नंबर है 162, बीच वाला जो पैराग्राफ है, ये छह द्रव्य है वो मिथ्या दृष्टियों के विषय नहीं होते हैं, वो उसको नहीं मान रहे। धर्म अधर्म द्रव्य जनमत के अन्यथा अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है, और उसका सही स्वरूप अन्यत्र कहीं नहीं बताया है। जीव द्रव्य तो सब कहे थे परंतु उसका स्वरूप सही नहीं मानते हैं। अविभ्राग भाव संबंध अर्थात कथनचित तादात्म्य से सहित जात्यंतर स्वरूप को प्राप्त, यानी अन्य स्वरूप को प्राप्त प्रमाण के विषय होने से दुर्नयों को दूर करने वाले अपने नाना रूप यानी अनेक रूप अनंत पर्यायों की प्रतिपक्षभूत असत्ता से सहित, हमने देखे ना द्रव्य सत्ता स्वरूप है कि असत्ता स्वरूप है, हा? अपने से सत्ता स्वरूप, पर से असत्ता स्वरूप, हमने सत असत दोनों धर्म देखे थे ना, यही ये यहाँ कह रहे। और उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप से संयुक्त ऐसे छह द्रव्य अनुगम है ऐसा जानना चाहिए, यानी यहाँ जो जाने जाते हैं उसी को अनुगम कहा, उस निरुक्ति के अनुसार ये उन्होंने अर्थ बताया। इस प्रकार अनुगम की प्ररूपणा की है। अब यहाँ नयों के स्वरूप की प्ररूपणा करते हैं। ये नए कहाँ से बात आई, ये चौथा पॉइंट था, पेज नंबर हमने 134 पर देखा था, जरा निकालो क्योंकि भूल जाते ना। उपक्रम का भेद नहीं है वो, उपक्रम ये पहला भेद है, उसके पांच भेद जुदे हैं। देखो ग्रंथ का अवतार होता है, पेज नंबर 134 नीचे का पैराग्राफ, ग्रंथ का अवतार किस तरह से होता है, तो उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। अब कहते उपक्रम हमने पांच प्रकार के देखे थे, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, प्रमाण उसके कितने ग्रह, श्लोक प्रमाण, पद अक्षर प्रमाण ग्रंथ होगा वो, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये उसके पांच भेद हमने देखे थे। उसके बाद निक्षेप देखे थे हमने, निक्षेप में हमने वो नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि की बात बताई थी, वो निक्षेप हो जाता है। निक्षेप के बाद अनुगम की बात की थी, यानी वो अनुगम प्रमाण की बात वहां चली थी, यानी ज्ञान जो जानता है उस ज्ञान को ही प्रमाण स्वीकार नहीं किया था, जानने वाले जीव को वहां प्रमाण स्वीकार किया था। और उसके बाद उन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष वगैरह वगैरह की विस्तार से बात की, तो हम श्रुत ज्ञान तक आके रुके थे। तो ये सब क्या हो गया, तीसरा अनुगम की बात हुई, यहाँ तक अनुगम की चर्चा हुई। उसके बाद चौथा है पॉइंट नय, अब नय किसको कहना उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। ये ग्रंथ के अवतार होता है तो कौन से नय से उसका कथन होता है आदि भी बातें उसमें गर्भित होती है। अब यहाँ हम 162 पेज पर पढ़ रहे हैं, अब नयों के स्वरूप की प्ररूपणा करते हैं। शंकाकार पूछते नय किसे कहते हैं, उसका समाधान ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। हम कहते हैं ना किस अपेक्षा से कह रहे हैं। देखो जो अन्य मति भी कहते हैं कि द्रव्य नित्य है और हमारे आचार्य भी कहते हैं द्रव्य नित्य है, परंतु आचार्यों का कहना कैसा है, स्यात् कथंचित किसी अपेक्षा से, तो वो नए से कह रहे हैं द्रव्य नित्य है, क्योंकि वो अनित्य वाला जो अनित्य अंश को जानने वाला नए, वो उनको स्वीकार है, उसकी अपेक्षा वहां पर रखते हुए वो कहते हैं द्रव्य नित्य है। यानी उसके पीछे स्यात् पद लगे या नहीं लगे, जैन आचार्यों का कहना है तो वहां वो स्यात् पद समझ लेना है। ख्याल में आती है बात? तो ये उनका कहने का अभिप्राय क्या है या जानने का अभिप्राय क्या है, तो कहते ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। 163 पेज शंकाकार पूछते हैं कि अभिप्राय का अर्थ क्या है, तो कहते प्रमाण से गृहित, प्रमाण से गृहित यानी प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश में यानी किसी धर्म में किसी अंश में वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय है। पूरी वस्तु उस एक अंश रूप से देख रहे हैं हम, पूरी वस्तु को पर्याय की तरफ से पूरे पर्याय रूप से वस्तु को देख रहे हैं। किसको पूछा ये मिथ्या दृष्टि है, क्यों कहते हैं वो पर्याय उसकी जो है मिथ्या, तो उसकी पर्याय में है, पर्याय की तरफ से पूरे द्रव्य को हम मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं पर्याय की तरफ से। तो कहते प्रमाण, परंतु उसके लिए कंडीशन क्या है, प्रमाण से जानी हुई होनी चाहिए। ये द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान वर्त रहा है और हमने पर्याय को मुख्य करके उसका कथन किया। कभी ऐसे पर्याय और द्रव्य का ज्ञान होना चाहिए और हमने द्रव्य को मुख्य करके निश्चय की बात बताई, निश्चय नय जिसको हम कहेंगे, द्रव्यार्थिक नय जो नाम देना है उसको, अभी हम नामों की यहाँ चर्चा नहीं करें, उसकी बाद में करेंगे। तो हमने वो द्रव्य को मुख्य किया, जो नित्य अंश को मुख्य करके हमने बताया। जब हम मुख्य करते हैं तो हमारे वो गौण जिस अंश को किया था वो दोनों ही अंश का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश में पूरी वस्तु का निश्चय, यानी केवल वो एक अंश को जानने वाला उसको नहीं नहीं कहा, उस एक अंश रूप से पूरी वस्तु को देखने वाला वो नहीं है। ये महत्व की बात है, केवल वो एक अंश को विषय नहीं करता है, पूरी वस्तु को उस एक अंश रूप से देख रहा है। देखो प्रमाण से गृहित वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय, उसी को कहते अभिप्राय। युक्ति अर्थात प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने, देखो युक्ति को युक्ति ना, युक्ति के अवलंबन से ऐसा कहते हैं, तो प्रमाण से यानी वो जानने को युक्ति कहते हैं। युक्ति यानी जो हम लौकिक में जिसको हमने कुछ युक्ति ट्रिक कर दी, हाँ युक्ति कर दी, वो युक्ति का अर्थ नहीं होता, यहाँ प्रमाण को युक्ति कहा है। युक्ति अर्थात प्रमाण से अर्थ के ग्रहण करने, अर्थ यानी पदार्थ अथवा द्रव्य और पर्याय में से किसी एक को अर्थ रूप से ग्रहण करने का नाम नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, प्रमाण से क्या करते हैं, हम द्रव्य को जानते हैं, द्रव्य ने पूरी वस्तु, अब वो पूरी वस्तु के भी हम नित्य अंश को द्रव्य कहते हैं और वो उत्पाद व्यय वाले अंश को पर्याय कहते हैं, या कहाँ भी अन्य किसी भी अपेक्षा से भेद हो तो उसको पर्याय कह सकते हैं। तो कहते कि प्रमाण से युक्ति का अर्थ क्या है, प्रमाण और नय दोनों से जानना उसको युक्ति कहेंगे। तो प्रमाण से अर्थ को ग्रहण करना यानी प्रमाण से द्रव्य को पूरी वस्तु को जानना, या द्रव्य और पर्याय में से किसी एक को अर्थ रूप से ग्रहण करना यानी द्रव्य में और पर्याय में से किसी, दोनों अंश हो गए ना, पूरी वस्तु के दो अंश किए, द्रव्य ने कायम रहने वाला, पर्याय ने भेद रूप अंश, किसी अंश को एक को अर्थ रूप से ग्रहण करना, अर्थ रूप यानी वस्तु रूप से ग्रहण करना, यानी पूरे अंश को यानी वो अंश रूप से पूरी वस्तु को देखना, उसका नाम नय है। प्रमाण से जानी हुई वस्तु के द्रव्य अथवा पर्याय में वस्तु के निश्चय करने को नय कहते हैं, यह इसका अभिप्राय है। इस वाक्य का अर्थ ही क्या है, जो हमने ऊपर बताया था प्रमाण से गृहित वस्तु के, वही बताया, प्रमाण से जानी हुई वस्तु के द्रव्य अथवा पर्याय में, देखो वस्तु और द्रव्य से दो शब्द बताए, क्योंकि पूरे वस्तु के लिए भी द्रव्य शब्द आता है और द्रव्य के नित्य अंश को भी द्रव्य कहते हैं, इसलिए हमेशा या बहुत बार कन्फ्यूजन होने के चांस है। ख्याल में आते हैं? पूरी वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्यायात्मक है, वहाँ द्रव्य है वो नित्य अंश और पर्याय है वो तो अनित्य अंश का हो या भेद रूप अंश, उसको पर्याय कहेंगे। यही कह रहे हैं, इन्हें प्रमाण से जानना आवश्यक है, नहीं तो वो नए को हम नए भी नहीं कहें। प्रमाण इन्हें वस्तु के सभी अंशों को जानने वाला वो प्रमाण है। इन्हें प्रमाण से हमने क्या किया, वस्तु के क्या, वो तो द्रव्य है तो उसके गुण का समूह है, उसमें प्रति समय पर्याय होती है, ये तो हमने सबको जाना है। जो नित्य है वही अनित्य है, ये दोनों को एट ए टाइम जान लेना, ये प्रमाण। और फिर उसमें से एक को मुख्य करके हम कथन कर सकते, कथन करने के लिए एक एक को मुख्य करके कथन करेंगे तब दूसरा है ही नहीं, ऐसा नहीं, उसको गौण कर लेते। हमने किसी को मुख्य किया तो तब वो दूसरा गौण हो जाता है, उसका अभाव नहीं हो गया है। हाँ हाँ, आपने ये दृष्टांत दिया कि सोने की बंगड़ी, यानी वो सोना जो कायम रहने वाला अंश वो सोना है, और अभी उसकी पर्याय कौन सी है, बंगड़ी है, तो सोने की बंगड़ी ये हमारा प्रमाण से जाना हमने। फिर हमने वो तो कितने तोला सोना है, तो हमने वो बंगड़ी की बंगड़ी है कि हार है ये हमने गौण कर दिया, तो हमारे पास कितना सोना है, तो सोने की दृष्टि को उसको देखा तो उसके द्रव्य की दृष्टि हो, और कैसा डिजाइन है, कब किया, क्या किया, इसकी चर्चा करेंगे, तो वो सोने को गौण कर दिया हमने और ये पर्याय को मुख्य कर दिया। परंतु उसमें वो सोने की बंगड़ी ये पूरा ख्याल में रख कर एक अंश को मुख्य कर रहे हैं, ख्याल में आई बात, इसको नए कहते हैं। 163 परिप्रेक्ष्य अभी चल रहे हैं, ये समाधान का दूसरा पैराग्राफ। प्रमाण ही नए है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर नयों के अभाव का प्रसंग आता है। प्रमाण को ही अगर नए कहेंगे तो नए जुदा रहता नहीं है, यदि कहा जाए नयों का अभाव हो जाए सो भी ठीक नहीं है, इन्हें यदि कहा जाए कि नयों का अभाव हो जाए, होता है तो होने दो, तो कहते वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर देखे जाने वाले एकांत व्यवहार के लोप होने का प्रसंग आवेगा। एकांत व्यवहार का क्या अर्थ होता है, ये जो नयों के द्वारा जो कथन होते हैं, जो जाना जाता है, वो तो देखने में आते हैं, लोग उससे व्यवहार होता है ना, किसी एक अंश को मुख्य करके उसके द्वारा व्यवहार हो जाता है, तो ये तो देखा जाता है, यानी वो नयों का कथन होता है या नयों से जानना हो रहा है, और अगर आप उसका निषेध करते हैं तो ये भी बात योग्य नहीं है। दूसरे, प्रमाण नय नहीं हो सकता, क्योंकि पहला क्या बताया कि वो व्यवहार में देखने में आता वो नहीं घटित होगा, दूसरी बात प्रमाण नय नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण का विषय अनेक धर्मात्मक वस्तु है, पूरी वस्तु उसका विषय है, और वस्तु कैसी होते, अनंत धर्मात्मक होती, अनेक धर्मात्मक होती है, यानी उसके सारे अंश उसमें गर्भित है तभी हम पूरी वस्तु कहेंगे। और नय प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि नय का एकांत विषय, एक अंत, एक धर्म उसका विषय है, एक अंश को विषय करता है, और प्रमाण पूरे सर्वांश को विषय करता है, और ज्ञान एकांत को विषय करने वाला है नहीं, यानी ज्ञान जो है वो तो सभी को जानने वाला, ज्ञान का कार्य जानना, तो सभी अंशों को जानेगा कि एक ही अंश को जानेगा। देखो कथन में एक अंश से हम कथन कर सकते हैं, एक की मुख्यता से हम अभिप्राय में ले सकते हैं, तो ज्ञान है वो एकांत को विषय करने वाला है नहीं, क्योंकि एकांत निरूप होने से अवस्तु स्वरूप है। क्या कहना चाहते हैं, वस्तु कैसी होती है तो अनेकांत स्वरूप होते, अनेक धर्मात्मक होती है, और उसको अगर हम नए को ही अगर पूरी वस्तु मानेंगे, नए से जानी हुई उसी को पूरी वस्तु मानेंगे, तो तो कोई अवस्थ हो जाएगी, क्योंकि हमने एक अंत को, एक धर्म को जाना है और एक धर्मात्मक वस्तु नहीं होती, अतः वह कर्म नहीं हो सकता। कर्म नहीं हो सकता नहीं, ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तथा नए अनेकांत को विषय करने वाला नहीं है, क्योंकि अनेकांत को विषय करने वाला तो प्रमाण है, नए तो किसी एक अंश को मुख्य करता है, क्योंकि अवस्तु में वस्तु का आरोप नहीं हो सकता। अब ये जो हमने पढ़ा है उसके लिए कुछ ऊपर फुटनोट की बात। अब एक नंबर कहाँ से आया, ऊपर प्राकृत में पहली लाइन में, प्रमाण परिग्रहित अर्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय अभिप्राय, यानी प्रमाण से गृहित वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय, वस्तु अध्यवसाय ने वस्तु का निश्चय, ऐसा जानना, वस्तु को उस एक अंश रूप से जानना या कहना, उसको अभी यहाँ अभिप्राय की बात हो रही है। इसके लिए उन्होंने जयधवला एक पृष्ठ 199 की बात उठाई है, मैंने जयधवला अभी निकाला था, मैं अभी 5-10 मिनट पढ़ रही थी ना। इसमें बहुत विस्तार है, इतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे, उन्होंने जो बताया उसको हम देखते हैं। वहां उन्होंने अलग अलग नयों के विस्तार से बात की है, इन्होंने क्या लिखा है? शायद पेज नंबर अलग है कि क्या है। हाँ हाँ एडिशन अलग होगी ना। वो नंबर अलग है क्योंकि ये बहुत बहुत विस्तार से नए किसे कहते हैं। हाँ यहाँ आया, पेज नंबर 183 पर है। प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ के एक देश में वस्तु का निश्चय करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। उसको अभिप्राय कहा था, वो इसको अभिप्राय, ज्ञाता के अभिप्राय को ही नए कहा था। और ये नए की परिभाषा कहो या अभिप्राय की परिभाषा कहो, एक ही कही है उन्होंने, ये वहीं से लिया है उन्होंने। प्रमाण परिग्रहित अर्थैक देशे वस्तु अध्यवसायो नयः, कि वहां दूसरी बात है, नयो ज्ञातुर अभिप्रायो युक्तितः अर्थ परिग्रह। इसमें भी उन्होंने पूरे आधे पेज तो उसके रेफरेंसेस दिए हैं। अभी दूसरे फुटनोट कहाँ है देखते हैं, 163 पेज पर। न नय प्रमाणम तस्य एकांत विषयत्वात्, अभी वो एक नेक्स्ट पेज पर होगा ना, नए प्रमाण नहीं है। यही बात है जो यहाँ लिखी वही वहां पर भी लिखी, वहां पृष्ठ 200 नहीं, पृष्ठ हमारा 184 है। हाँ देखो, अभी हम दो नंबर के फुटनोट नीचे लिखे, किंचन नय प्रमाणम, नय है वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण व्यपाश्रयस्य वस्तु अध्यवसायस्य तद्विरोधात्, क्योंकि हमने देखा था कि प्रमाण के द्वारा गृहित एक अंश में व्यवहार होता है, उसका प्रवृत्ति होती है, उसको हम नए मानते हैं और उसके साथ विरोध आ जाएगा। सकलादेश प्रमाणाधीन, विकलादेशो नयाधीन इति भिन्न कार्य दृष्टे है वा न नया प्रमाणम, यानी वो सकलादेश सगळे पूरी वस्तू वो जानने वाला वो तो प्रमाण है, यानी सकलादेश प्रमाण के अधीन है और विकलादेश यानी वस्तु का एक अंश वो नहीं के अधीन है, नहीं से उसको जानते हैं। या भिन्न कार्य दृष्टिवान या प्रमाण, दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है, किसको क्या ग्रहण करता है, इसलिए वो नए प्रमाण नहीं हो सकता। आगे भी लिखा है किंचन नया प्रमाणम एकांत रूपत्वात, वो तो ऊपर बताया था एक अंत का विषय एकांत होने से वो नए वो प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाणेच अनेकांत रूप संदर्शनात, क्योंकि प्रमाण से अनेकांत रूप का दर्शन हो जाता है, जानने में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 163 नीचे से चौथी लाइन। इसके अतिरिक्त प्रमाण केवल विधि को ही नहीं जानता, क्योंकि दूसरे पदार्थों से भेद को न ग्रहण करने पर उसकी प्रवृत्ति के संकरता का प्रसंग अथवा समान रूप से अज्ञान का प्रसंग आवेगा। क्या कहते हैं, केवल विधि को ही नहीं जानता, इसका अर्थ क्या है? आपने कहा कि ये पुस्तक है, तो केवल ये पुस्तक है ऐसा ही जान रहे हैं कि ये टेबल नहीं है ऐसा भी उसी समय जान रहे हैं? यानी ये पुस्तक है, ये अन्य कोई वस्तु नहीं है, ये उसी ज्ञान का कार्य ही है विधि निषेध रूप से जानना। जब हमने कहा ये सफेद है, तो सफेद है में वो काला नहीं, पीला नहीं, लाल नहीं, वो नीला नहीं, सभी बातें होती है ना, इसको कहते मात्र विधि से नहीं जानता, उसके साथ वो निषेध रूप ज्ञान वहां वर्त रहा है। अभी हमने कहा अभी अच्छा प्रकाश आया है, तो प्रकाश है ने अंधकार नहीं है उसके साथ जाना जा रहा है, ये कह रहे। यानी यहाँ ऐसा बताते हैं जयधोला में से मैं पढ़ रही हूँ 190 पेज पर, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो केवल विधि को ही विषय करता है, ऐसा वहां लिखा है। मात्र विधि को विषय करने वाला कोई ज्ञान ही नहीं है, यानी ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न वहां पूछा गया था, तो कहते हैं जो ज्ञान प्रतिषेध यानी निषेध, उसको जो विषय नहीं करेगा और विधि में ही प्रवर्तमान होगा तो संकर भाव को प्राप्त हो जाएगा। यानी वो सफेद है तो वो लाल भी है, पीला भी है, ऐसा कहना पड़ेगा, दूसरे वस्तु के साथ मिल जाएगा वो। वो दूसरी वस्तु नहीं है हम तभी नक्की करते हैं, हमने कोई ये विशिष्ट वस्तु है पेन है तो ये पेंसिल नहीं है, पट्टी नहीं है, हमने निश्चित किया है। अगर वैसा निश्चित नहीं होता तो ये पेन भी है पेंसिल भी है, ऐसा कहना पड़ता, ये उसका अर्थ है। तो विधि और निषेध और या प्रतिषेध दोनों रूप से ज्ञान होता है, तो कहते संकर भाव ने वो मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी दूसरे पदार्थों के साथ। अर्थात केवल विधि में ही प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान सर्वत्र केवल विधि ही करेगा। यानी जैसा अपने को ज्ञानत्व आदि का विधान करेगा, ज्ञान पने का जो करेगा जीव में, तो उसी प्रकार अपने जड़त्व आदि रूप पर रूपों का भी विधान करेगा। जैसे जीव को ज्ञान रूप कहते हैं तो जड़ रूप भी कहने लगेगा, इसको कहेंगे संकर आ जाएगा उसमें। अतः ज्ञान और जड़ में सांकर्य हो जाता है, संकरपण है ना सांकर्य, इसलिए उसके जड़ से कोई भेद नहीं रहेगा, तो ज्ञान ने क्या जाना, इस तरह से उसमें दोष आएगा। यानी इसलिए केवल विधि को विषय करने वाले ज्ञान को अपने ज्ञान रूप से सत्व मानने में विरोध आता है। ऐसे भी केवल प्रतिषेध करने वाले ज्ञान को भी वो ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कोई विधि होगा तो ही उसका ये वो नहीं है सब कहते हैं, तो कुछ है इसकी भी बात है ना। जैसे ध्यान करने बैठे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं धन रूप नहीं हूँ, अरे तुम कुछ हो भी तो के नहीं हो, वस्तु है अस्थि है तो उसमें भी कुछ अपना उसका जो कुछ स्वरूप है कि नहीं है, तो केवल वह शून्य रूप है, ये वो नहीं वो नहीं वो नहीं, मैं जीरो रह गया, ऐसा है क्या वस्तु? तो ऐसा नहीं है। इसलिए केवल निषेध रूप भी नहीं है और केवल विधि रूप भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आगे भी उसकी बहुत चर्चा है, अभी हम अपने पेज पर आते हैं। ये मैंने अभी जो पढ़ा था वो पेज नंबर 190 पर था। हम अब कहते हैं पेज नंबर 163 पर आ गए अभी हम। नीचे से चौथी लाइन, इसके अतिरिक्त यानी ये जो चर्चा हुई इन एडिशन, प्रमाण केवल विधि को ही नहीं जानता, प्रमाण कहो ज्ञान कहो, केवल विधि को ही नहीं जानता क्योंकि दूसरे पदार्थों से भेद को न ग्रहण करने पर, यानी वो वस्तु दूसरे पदार्थ से भिन्न है ऐसा अगर हम नहीं जानेंगे तो उसकी प्रवृत्ति के संकरता का प्रसंग आएगा, यानी वो दूसरे चीजों में उसकी मिलावट हो जाएगी, अथवा समान रूप से अज्ञान का प्रसंग आ जाएगा, यानी उसमें नहीं जानने रूप प्रसंग आ जाएगा क्योंकि उसको उस चीज को उन्होंने अन्य चीजों से भिन्न नहीं पहचान लिया है। वह प्रमाण प्रतिषेध मात्र को ग्रहण नहीं करता, देखो मात्र शब्द लगाए ना, केवल विधि को नहीं करता यानी विधि मात्र को नहीं ग्रहण करता, ऐसे केवल प्रतिषेध को ही ग्रहण करता है कहेंगे तो वो भी नहीं है। जब कहते ये वस्तु काली नहीं है तो कुछ तो उसका वर्ण होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे ये काली नहीं है पीली नहीं है क्योंकि विधि को न जानने पर वह यह इससे भिन्न है ऐसा ग्रहण करने के लिए असमर्थ है। जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, तो शरीर नहीं हूँ क्योंकि शरीर जड़ है, तो मैं कुछ तो हूँ कि नहीं, अजड़ स्वरूपी ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा अगर हम उसको निश्चित करते हैं तभी तो हमने वो जड़ स्वरूप शरीर रूप नहीं है नक्की कर दिया, यानी विधि और निषेध दोनों उसमें आ जाते हैं। यानी वो केवल यानी मात्र विधि रूप भी नहीं ग्रहण करता, मात्र प्रतिषेध रूप भी नहीं ग्रहण करता, विधि और प्रतिषेध दोनों रूप से वो ग्रहण करता है। और प्रमाण में, इसको प्रमाण कहते हैं, विधि व प्रतिषेध दोनों परस्पर भिन्न भी नहीं प्रतिभासित होते, यानी वो कोई विरोधी तो नहीं है, एक दूसरे के पूरक है कि जीव ज्ञान स्वरूप है जीव जड़ स्वरूप नहीं है, ये कोई उसका विरोध तो नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है उसी की तो पुष्टि हो रही है, ख्याल में आती है बात? क्योंकि ऐसा होने पर पूर्वोक्त दोनों दोषों का प्रसंग आता है, अगर एक दूसरे के विरोधी होते तो वही बात होती कि वो जान ही नहीं सकता था। इस कारण विधि प्रतिषेध रूप वस्तु प्रमाण का विषय है, जब हम प्रमाण से जाना ऐसा कहते हैं तो वो जिस रूप है और अन्य रूप नहीं है वो उसमें कहते प्रमाण से जाना है, यानी वस्तु अनेकांतात्मक है, ये उसमें अनेकांत, हमने गुरुदेव के प्रवचनों में बहुत बार सुना होगा, इसी से प्राप्त होगी अन्य किसी से नहीं, ये मोक्ष मार्ग जो निश्चय रत्नत्रय वही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं है, अन्य ने दया दान वगैरह क्रियाएं मोक्ष मार्ग नहीं है, वो नहीं है ये हो गया उसका प्रतिषेध, और विधि है यही इसी से होगा, ये होगी विधि, इसको अनेकांत को जाना कहेंगे, उसको प्रमाण से जाना हुआ कहेंगे, नहीं तो इससे भी होता है उससे भी होता है वो कहाँ प्रमाण हुआ, ख्याल में आई ना बात?
विधि यानी अफर्मेटिव,
विधि यानी अस्थि रूप से वस्तु को जानना और निषेध यानी उसमें जो नहीं है उस रूप वो वस्तु नहीं है इस तरह से जानना, जिसको हम अस्थि नास्ति रूप से जानना या पॉजिटिव या तो हाँ विधि निषेध, उसको प्रतिषेध कहो या निषेध कहो एक ही बात है। देखो इस कारण विधि प्रतिषेध रूप वस्तु, वस्तु ही विधि और प्रतिषेध रूप है और उसको जानने वाला वो प्रमाण है, वस्तु अपने से है वस्तु पर से नहीं है, अपने से है वो हो गई विधि, पर से नहीं हो गए वो प्रतिषेध या निषेध, और उन दोनों को जानने वाला वो है प्रमाण, एट ए टाइम जाना उसने दोनों को और फिर एक का कथन करेंगे, वस्तु अपने से है ये क्या हो गया, नए हो गया ना, वो दूसरे का स्वीकार है उसको, पर हमने एक ही का ग्रहण किया है, परसे नहीं है। अभी हम कहते अस्ति और नास्ति इस तरह से। अतएव ज्ञान एकांत को विषय करने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है, ज्ञान प्रमाण होता है, ज्ञान वो प्रमाण है, और प्रमाण क्या है, वस्तु को विधि और निषेध रूप से जानता है, इसलिए ज्ञान एकांत को विषय करने वाला नहीं है। हाँ, अब कहते अनुमान भी, ये प्रमाण की बात हो गई पहले, तो अनुमान से हम कहते ना यहां से धुआं दिख रहा है इसलिए अग्नि होनी चाहिए, हमने अनुमान लगाया, तो अनुमान भी एकांत को विषय नहीं करता जिससे कि उसे नए कहा जा सके, यानी अनुमान भी नए नहीं है, क्योंकि अनुमान से जानी हुई वस्तु कहीं प्रत्यक्ष जानी हुई होती है, किसी के प्रमाण का विषय हो सकता है, क्योंकि धुआं और अग्नि एक साथ देखी है उन्होंने। तो यहां कहते अनुमान भी एकांत को विषय नहीं करता, यानी अनुमान ज्ञान ये नए नहीं है, ये ना कहना चाहते हैं जिससे कि उसे नए कहा जा सके, क्योंकि वह भी उपर्युक्त न्याय से, ऊपर बताए हुए न्याय से, जैसे विधि और निषेध के बारे में अभी हमने देखा, अनेकांत को विषय करने वाला है, इसलिए प्रमाण नए नहीं है। ये प्रमाण को ही नए क्यों नहीं कह सकते, उसकी बात यहाँ बताई। अनुमान भी प्रमाण का है, ये प्रमाण के ही भेद है, अनुमान भी प्रमाण का एक भेद है। देखो देखो, ये प्रमाण ज्ञान कौन कौन से है, आपने सुने होंगे, मति, श्रुत, अवधि, मन, परे, केवल ज्ञान, ये प्रमाण है। मति ज्ञान के भेद भी प्रमाण के ही है। तो मति ज्ञान में क्या क्या आता है, वो तो इंद्रिय ज्ञान जो है उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसको व्यवहार में हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना, वो व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष, यानी सारे इंद्रिय और मन के द्वारा जो अभी हमने सभी भेद देखे ना, इतने 336, वो सारे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये सब मति ज्ञान के भेद है, ये सब प्रमाण में है। तो ये अनुमान भी प्रमाण है, ये कहना चाहते हैं, अनुमान नए नहीं है, प्रमाण है, ये इतना बताना चाहते बस। तो कहते अनुमान भी एकांत को, इन्हें एक अंत को, एक धर्म को विषय नहीं करता जिसकी कि उसे नए कहा जा सके, क्योंकि उसके लिए भी ऊपर बताया हुआ न्याय लागू होता है, इसलिए प्रमाण नए नहीं है, किंतु प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश में वस्तुत्व की विवक्षा, विवक्षा करने ने कथन करना, अपेक्षित कथन को कहेंगे विवक्षा, वस्तुत्व की, यानी उसको हमने वस्तु कह दिया, उस एक अंश में वस्तु, वस्तुपना हमने देखा, पूरी वस्तु को उस अंश रूप से देखा, उसका नाम नय है, यह सिद्ध हुआ। अब नीचे का पैराग्राफ 164 पेज पर, प्रमाण और नय से वस्तु का ज्ञान होता है, ये सुना है कहीं पर आपने, प्रमाण नय ही वस्तु अधिगमा, यहाँ पर भी प्रमाण नय ही अधिगमा ऐसा सूत्र आता है, यहाँ पर भी देखा ऊपर प्राकृत में लिखा है उन्होंने, नए पैराग्राफ में शुरुआत में, प्रमाण नय ही वस्तु अधिगम इति अनेन सूत्रेण अपि न इदम व्याख्यानम विघटते, इन्हें यहाँ कहते प्रमाण और नये से वस्तु का ज्ञान होता है, इन्वर्टेड में डाला, इस सूत्र द्वारा भी, ये सूत्र का वचन है, वह व्याख्यान विरुद्ध नहीं पड़ता, यानी अभी यहाँ जो कहा कि प्रमाण है वो नये नहीं हो सकता, इसके लिए ये कोई विरोध नहीं है उसमें, उसमें तो यही बात बताई है कि प्रमाण और नये से वस्तु का ज्ञान होता है, इसका कारण यह है कि प्रमाण और नये से उत्पन्न वाक्य भी उपचार से प्रमाण और नये है। देखो, प्रमाण और नये ज्ञान के भेद हैं, तो वो प्रमाण के द्वारा कथन, यानी प्रमाण से जाने वस्तु का वचनों के द्वारा जो कथन करते हैं उसको भी प्रमाण कहते हैं उपचार से, यानी नये ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं, इसलिए यहाँ जो जैसे एक अंश के द्वारा उसका कथन करना, ये कथन में आता है, तो ये तो वचनात्मक नए हो गए। फिर से पढ़ते इसको। इसका कारण यह है कि प्रमाण और नए से उत्पन्न वाक्य भी, वचन जिसको कहेंगे, उपचार से प्रमाण और नए है, यानी प्रमाण को कथन करने वाला वाक्य उसको प्रमाण कहेंगे, नए को कथन करने वाले वाक्य को ही यानी वचनात्मक नए कहेंगे। उन दोनों से उत्पन्न बोध, बोध यानी ज्ञान, विधि प्रतिषेधात्मक वस्तु को विषय करने के कारण, यानी वो ज्ञान किसको विषय करे, वस्तु कैसी होती, विधि और प्रतिषेधात्मक, अभी हमने देखा था वस्तु अपने से है पर से नहीं है, यही वस्तु का विधि प्रतिषेधात्मक रूप है। तो कहते हैं कि ये जो दोनों से उत्पन्न, यानी वो तो प्रमाण वाक्य नए वाक्य है, उत्पन्न उभय बोध, दोनों प्रकार का बोध यानी ज्ञान, विधि प्रतिषेधात्मक वस्तु को विषय करने के कारण प्रमाणता को धारण करते हुए भी कार्य में कारण का उपचार करने से प्रमाण व नय है। यानी जो वाक्य है वो वाक्यों के द्वारा भी हम ज्ञान करते हैं वस्तु का, इसलिए वो वचन को भी प्रमाण और नय कहने में आता है। ख्याल में आई बात? कार्य क्या हुआ, जाना, उसमें कारण का उपचार किया, इस प्रकार सूत्र में ग्रहण किए गए हैं। नए वाक्य से उत्पन्न बोध प्रमाण ही है, नए नहीं है, इस बात के ज्ञापनार्थ उन दोनों से वस्तु का ज्ञान होता है ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं, नयों के जो वाक्य है उसके द्वारा हमें वस्तु का बोध होता है, अथवा बोध को प्रदान करने वाला पुरुष प्रमाण और उसे अप्रदान करने वाला नय है। वस्तु का ही अधिगम किया जाता है, अवस्तु का नहीं। यानी ज्ञान किसका होता है, वस्तु का, अधिगम यानी ज्ञान, अवस्तु का नहीं, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना प्रमाण के भीतर प्रवेश होने से नए के अभाव का प्रसंग आएगा। नयस्य प्रमाणांतः प्रवेशतो अभावः। क्या कहा ऊपर, वस्तु अधिगम एव क्रियते न अवस्तुनः इति प्रतिपत्ति इति प्रतिपत्तव्यम्, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि अन्यथा नयस्य प्रमाणांत प्रवेशतः अभाव प्रसंगात्। इसके बिना बिना कहाँ से लाया उन्होंने, नयस्य प्रमाणांत प्रवेशता अभाव प्रसंगता, अन्यथा, अन्यथा के अर्थ में लिया उन्होंने, अदरवाइज। इसके बिना का अर्थ होता है अन्यथा, यानी ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रमाण के भीतर प्रवेश होने से नए के अभाव का प्रसंग आएगा, यानी नए को ही प्रमाण मानेंगे तो नए रहेगा ही नहीं, उस प्रमाण ही हो जाएगा। अब हम आते हैं 165 पेज पर। प्रमाण से गृहित वस्तु में, वस्तु यानी प्रमाण से जानी हुई वस्तु, जो एकांत रूप व्यवहार होता है वह नए निमित्तक है। एकांत रूप यानी किसी एक अंश रूप जो व्यवहार करते हैं वो नए के निमित्त से होता है। हर जगह प्रमाण से गृहित वस्तु ये पहले में पहले रखा है, यानी सभी अंशों को जानने वाला ज्ञान है और व्यवहार उसके एक अंश में हो रहा है, इसलिए समस्त व्यवहार नय के अधीन है। लौकिक में तो हमने कितने उदाहरण देते हैं ना, बोली भाषा में भी हम नयों का उपयोग करते हैं, जैसे हम जा रहे और हमने ए टैक्सी इधर आओ, तो टैक्सी सुनती है क्या आपका? मेहमान आते तो हम क्या पूछते हैं, आप चाय के कॉफी? तो वो पुरुष चाय कॉफी होता है क्या? नहीं, आप क्या लोगे, चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे? तो यानी इस तरह से व्यवहार तो बहुत होते हैं, है ना। तो कहते समस्त व्यवहार, अभी वो तो लौकिक व्यवहार तो दूर का है, यहाँ तो अन्य बात है, नए के अधीन है। प्रमाण के अधीन व्यवहार के न पाए जाने से उसके अस्तित्व में संशय करने वाले के लिए प्रमाण निमित्तक व्यवहार के दिखलाने के लिए सकलादेश प्रमाण के अधीन है और विकलादेश नय के अधीन है, ऐसा प्रतिपादन करने से इस कारण भी यह व्याख्यान विघटित नहीं होता। विघटित नहीं होता है ने? घटित होता है। क्या कहना चाहते हैं, ये जो समस्त व्यवहार नय के अधीन है ऐसा जो कह रहे हैं, और क्योंकि वो जो व्यवहार किस में होता है, वस्तु के किसी अंश में हम जो व्यवहार रूप से जो करते हैं, परंतु ये प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं है होगा ऐसा कोई कहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं सकलादेश ने संपूर्ण वस्तु, उसको सकलादेश कहते हैं। विकलादेश ने एक देश, वस्तु का एक अंश, इसलिए कहते हैं सकलादेश प्रमाण के अधीन और विकलादेश नय के अधीन। इसके लिए फिर शंकाकार पूछता है सकलादेश ने क्या, सकलादेश किसे कहते हैं? समाधान, स्याद अस्ति अर्थात कथनचित है इत्यादि सात भंगों का नाम सकलादेश है, क्योंकि प्रमाण निमित्तक होने से इनके द्वारा सात स्याद शब्द से समस्त अप्रधानभूत धर्मों की सूचना की जाती है। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये सप्तभंगी लगाते ना, स्यात शब्द लगाकर वस्तु को समझाना है, तो वस्तु कैसी है, हम कहते स्यात अस्ति है, तो स्यात अस्ति जब कह दिया तो उसके बाकी छह भंगों का स्वीकार है कि नहीं हमको, है ना, तो उसमें ये नक्की होता है स्यात नास्ति भी है, स्यात अस्ति नास्ति भी है, स्यात अवक्तव्य भी है, स्यात अस्ति अवक्तव्य भी है, स्यात नास्ति अवक्तव्य भी है, स्यात अस्ति नास्ति अवक्तव्य भी है। तो ये क्या हो गया, सभी को स्वीकार कर दिया तो ये प्रमाण हो गया। यही कह रहे हैं कि सकलादेश किसको कहना, तो स्याद अस्ति अर्थात कथनचित है इत्यादि सात भंगों का नाम सकलादेश है। एक ही भंग को नहीं लेना, सातों का स्वीकार है वहां पर, यानी वस्तु कैसे पूछेंगे तो पूरे सातों को हम कहेंगे, क्योंकि प्रमाण निमित्तक होने से इनके द्वारा स्यात शब्द से समस्त अप्रधानभूत धर्मों की सूचना की जाती है। एक धर्म को बताए परंतु सभी की सूचना हो जाती है उसके अंदर। देखो शंका पूछते विकलादेश किसे कहते हैं, समाधान अस्ति अर्थात है इत्यादि सात वाक्यों का नाम विकलादेश है। पहले क्या कहा, स्यात, स्यात यानी किसी अपेक्षा से है, जब किसी अपेक्षा कह दिया तो अन्य अपेक्षाएं है ये हमने नक्की कर दिया, यानी किसी अपेक्षा है, किसी अपेक्षा नहीं है, किसी अपेक्षा है नहीं है, यानी अस्ति नास्ति, वो सभी सातों अपेक्षा हमारे ख्याल में आए, यानी स्यात अस्ति कहने से वो सारा प्रमाण हो गया, और केवल अस्ति कहने से केवल उसमें से एक को ग्रहण किया है ना, तो उस अस्थि रूप से पूरी वस्तु को ग्रहण किया है, वस्तु है बस इतना ही लिया, वो नहीं वो किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से वो सबको नहीं लिया हमने, प्रमाण को नहीं लिया, एक अंश को लिया। तो यही कहते अस्थि अर्थात है इत्यादि सात वाक्यों का नाम विकलादेश है, क्योंकि वे नयों से उत्पन्न है। कहाँ गया विकलादेश, हाँ वे नयों से उत्पन्न है। अभी इसके लिए फुटनोट पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। ये सकलादेश क्या है और विकलादेश क्या है उसी की चर्चा है फुटनोट में। यहाँ पूछते हैं कह सकलादेश है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद वक्तव्य स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च घट इति सप्त अपि सकलादेश। सातों को लिया स्याद अस्ति स्याद नास्ति सब अभी हमने जो बताए थे। कथम एतेषां सप्तानां सुनयानां सकलादेशत्वं। तो कहते ये जो सात जो है वो नय है सात सुनय है उसको सकलादेश क्यों कहते हैं। तो कहते हैं न ऐसा नहीं है। एक धर्म प्रधान भावेन साकल्येन वस्तुनः प्रतिपादकत्वात्। यानी एक धर्म का प्रधान एक धर्म की प्रधानता से पूर्ण वस्तु का प्रतिपादन करने के कारण इसको भी प्रमाण स्वीकार किया गया है। तत्र यता युगपद्यम तदा सकलादेशः। यानी उनमें भी युगपद सबका ग्रहण है तो उसको सकलादेश कहेंगे। स एव प्रमाणमिति उच्यते उसी को प्रमाण कहते हैं। सकलादेशः प्रमाणाधीन इति वचनात् वो सकलादेश वो प्रमाणाधीन होता है इस वचन से। आगे भी पूछते हैं तत्वात् राजवर्ती का कथम सकलादेशः। एक गुण मुखेन अशेष वस्तु रूप संग्रहात् सकलादेशः। यानी एक गुण की मुख से पूरी वस्तु को बता रहे हैं इसलिए भी उसको सकलादेश कहते हैं। अब पूछते हैं को विकलादेश है। विकलादेश क्या है? अस्ति एव नास्ति एव अवक्तव्य एव अस्ति नास्ति एव अस्ति अवक्तव्य एव नास्ति अवक्तव्य एव अस्ति नास्ति अवक्तव्य एव घट इति विकलादेश। यानी घट के ऊपर लगाया उन्होंने वो है ही लगाया एव लगाया ऊपर केवल अस्ति स्याद नास्ति। यानी वो स्याद यानी एक का कथन किया पर स्याद शब्द लगाने के कारण वो पूरी वस्तु का ग्रहण हुआ। अब यहाँ अस्ति एव वो स्याद नहीं किसी अपेक्षा नहीं कहेंगे अपेक्षा बता देंगे और है ही कहेंगे। तो घट तो है ही वो पट नहीं है। यानी वो तो एव लगाते हैं तो नए वाक्य हो जाता है और वो स्याद अस्ति ऐसा कहेंगे तो प्रमाण हो जाता है सकलादेश हो जाता है। यदा तु क्रमः तदा विकलादेश। देखो ऊपर क्या कहा तो सबको इकट्ठा ग्रहण किया तो सकलादेश हुआ जैसे इसको क्रम क्रम से एक एक को करके लिया तो विकलादेश हुआ। स एव नय इति व्यपदिश्यते उसी को नय कहते हैं। विकलादेशो नयाधीन इति वचनात् विकलादेश नयाधीन होता है। अथ कथम विकलादेशः विकलादेश कैसा है? निरंशस्य अपि गुणभेदात् अंशकल्पना विकलादेशः। यानी वस्तु निरंश होने पर भी गुणभेदों की जो अंश कल्पना है इसलिए भी उसको विकलादेश कहेंगे। अभी उन्होंने जयधवला पृष्ठ 201-203 बताया परंतु यहाँ के पेज अलग है। मैं जरा यहाँ से देखती हूँ 185 होना चाहिए। हाँ क्या दूधू क्या कोई कहाँ है रूरू रूरू लिखा है हमारे यहाँ पुली लिखा है। हाँ यानी पहले का कुछ वाक्य है उसको छोड़कर केवल आगे का लिखा है उन्होंने। ये नई पुस्तक है क्या? यहाँ हमारे यहाँ क्रॉस 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 कर दिए यानी उसके पहले कुछ वाक्य है हम उसका अंतिम वाक्य का लास्ट वहाँ उन्होंने लिया है इस तरह से। देखो ये 185 है यहाँ हमारा पेज नंबर यहाँ जयधवला पृष्ठ 201 लिखा है ना तो हमारे पुस्तक में पेज 185 जयधवला उसमें मैं पढ़ती हूँ सकलादेश किसे कहते हैं। देखो घट कथनचित है घट कथंचित नहीं है, वो घट शब्द पर सब लगा रहे, कथंचित अवक्तव्य है, कथंचित है और नहीं है, कथंचित है और अवक्तव्य है, कथंचित नहीं है और अवक्तव्य है, कथंचित है नहीं है और अवक्तव्य है, इस प्रकार ये सातों ही सुनय सकलादेश है। तो अभी हमने जो पढ़ा ना प्राकृत में वही बात है। तो कहते सातों सुनयों को सकलादेश पना कैसे है? नहीं, क्योंकि एक धर्म को प्रधान कर समस्त रूप से वस्तु के प्रतिपादक होने से सातों ही सुनय सकलादेश है। जय धौला 185, वहां 201 लिखा है उसके बदले 185 है। यानी सकलादेश वो प्रमाणाधीन होता है, और विकलादेश क्या है जो अभी हमने पढ़ा था ना, वही है कि घट है ही, घट नहीं ही है, घट अवक्तव्य ही है, घट है ही है और नहीं ही है, इस तरह से ही लगाए एव, तो उसको हम विकलादेश कहेंगे। नियम पर और भी बहुत चर्चा है उसके अंदर, अभी हम यहाँ की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 165 पेज अभी बहुत है, लास्ट लाइन पढ़ रहे थे 165 पर। तथा पूज्यपाद भट्टारक ने भी सामान्य नय का लक्षण यही कहा है, वह इस प्रकार है, प्रमाण से प्रकाशित, प्रकाशित यानी जाने हुए जीवादिक पदार्थों के चाहिए, पदार्थों की नहीं, पदार्थों के पर्यायों का प्ररूपण करने वाला नय है। हमने यही बात बताई थी ना, प्रमाण से जाने ही वस्तु के एक देश में वस्तु का आरोप करना, उसका प्ररूपण करना, तो प्रमाण से प्रकाशित जीवादिक पदार्थों के पर्यायों का प्ररूपण करने वाला नय है, इसी को स्पष्ट करते हैं। प्रकर्ष से अर्थात संशयादि से रहित वस्तु का ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं? संशय विपरीतता अनद्योषय से रहित, वो प्रमाण है। तो प्रकर्ष से जाना है। अभिप्राय यह है कि जो समस्त धर्मों को विषय करने वाला हो वह प्रमाण है, उससे प्रकाशित अर्थात प्रमाण से गृहित उन अस्तित्व नास्तित्व व नित्यत्व अनित्यत्वादि अनंत धर्मात्मक जीवादि पदार्थों के जो विशेष अर्थात पर्याय है उनका प्रकर्ष से अर्थात दोषों के संबंध से रहित होकर निरूपण करने वाला नय है। ऊपर क्या बताया था? प्रकर्ष से संशयादि रहित वस्तु का ज्ञान प्रमाण है, यानी वो समस्त धर्मों को विषय करने वाला था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु के अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व अनित्यादि जो अनंत धर्म है, ऐसे जो जीवादिक पदार्थ है, अनंत धर्मात्मक पदार्थ है, उसके जो विशेष यानी पर्याय है, उन पर्यायों की जो बात है उसके बारे में दोषों से रहित होकर निरूपण करने वाला वो नहीं है। वो दोष से रहित शब्द लगाया है क्योंकि वो कुछ कुने भी होते हैं, खोटे भी, एकांतवादी भी होते हैं, इसलिए उसका निषेध करने के लिए कहते दोषों के संबंध से रहित होकर निरूपण करने वाला। अब शंकाकार पूछते हैं अबोध रूप अभिप्राय, अबोध ने नहीं जानने वाला या कुछ नहीं बोध होना, संशयादि दोषों से रहित होकर जीवादि पदार्थों की पर्यायों का निरूपक कैसे हो सकता है? तो समाधान कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय के अभिप्राय से उत्पन्न द्रव्य पर्याय के निरूपणात्मक वचनों को अथवा अभिप्रायवान पुरुष को न मानने से कोई दोष नहीं आता। यहाँ क्या कहते हैं, ये वचन को क्यों नहीं कह रहे, उनका प्रश्न है, क्योंकि वचन तो जड़ है, वो तो कुछ जानता नहीं है, वो अबोध रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। प्रश्न क्या है, ज्ञान को हम नए कहते हैं, नए प्रमाण तो ठीक है, वचन को क्यों कह रहे, ये उनका कहना है। ऊपर बताया था ना, निरूपण करने वाला, निरूपण करने वाला कौन सा होता है, तो वचन होता है, इसलिए उनको ये प्रश्न नहीं है, ये अबोध रूप, क्योंकि वचन वाणी तो जड़ है, वो अबोध रूप है, तो वो निरूपक जो है तो संशय से रहित होकर जीवादि पदार्थों का निरूपक कैसे हो सकता है, जो जड़ है वो संशय से रहित होकर निरूपणा कैसे कर सकता है, ये प्रश्न था। तो कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय के अभिप्राय से उत्पन्न द्रव्य पर्याय के निरूपणात्मक वचनों को या अभिप्रायवान पुरुष को, दे बोलने वाले पुरुष को भी नहीं कहेंगे, अपेक्षा ले लो। देखो ये को ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहा, वो तो ज्ञाता है और वो अभिप्राय पूर्वक वो वचन बोल रहा है, तो उसको वो तो अभिप्राय में उसके ज्ञान में तो सही है और वो एक नए के द्वारा कथन कर रहा है, इसलिए कहते द्रव्य और पर्याय के अभिप्राय से उत्पन्न, ये अभिप्राय ने वो जानने वाला पुरुष है ना, वहाँ ज्ञानी है वहां पर, उसके द्रव्य पर्याय के निरूपणात्मक वचनों को यानी ज्ञानी के वचनों को या अभिप्रायवान पुरुष यानी वो जो ज्ञानी जो पुरुष है, जो श्रुत ज्ञान के भेद है नए वगैरह, उसको नए मानने में कोई दोष नहीं आता, ऐसा न मानने पर उपर्युक्त दोष का प्रसंग आता है। क्योंकि वचनों को नए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी की अभिप्राय सहित वचन है, इसलिए उसको नए कहते हैं। तथा प्रभाचंद्र भट्टारक ने भी कहा है, प्रमाण के आश्रित परिणाम भेदों से वशीकृत पदार्थ विशेषों से प्ररूपण में समर्थ जो प्रयोग होता है वह नए है। क्या कहता, प्रमाण के आश्रित परिणाम भेदों से वशीकृत, ये प्रमाण के आश्रित परिणाम जो है ज्ञाता ने जाने हुए है और पदार्थ विशेषों से प्ररूपण में समर्थ जो प्रयोग है, क्योंकि वो तो ज्ञानी जो प्ररूपण करने में जो कुछ उसका योगदान हुआ तो उसमें वो प्रयोग होता है वह नए है, उसी को स्पष्ट करते हैं। जो प्रमाण के आश्रित है तथा उसके आश्रय से होने वाले ज्ञाता के भिन्न भिन्न अभिप्रायों के अधीन हुए पदार्थ विशेषों के प्ररूपण में समर्थ है, ऐसे प्रणिधान अर्थात प्रयोग अथवा व्यवहार स्वरूप प्रयोक्ता का नाम नए है, उसका जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम वचन भी कहेंगे, वो नए है। वह यह नए पदार्थों के यथार्थ परिज्ञान का निमित्त होने से मोक्ष का कारण है। देखो नयों को मोक्ष के कारण बता रहे हैं, क्यों, पदार्थों का अच्छी तरह से सर्वांगीण ज्ञान हो इसमें वो निमित्त है। जैसे आत्मा आत्मा है, आत्मा का अनुभव करो कहने से कुछ भाषित नहीं हुआ शिष्य को, तो गुरु ने उसको समझाया ये आत्मा है, वो शरीर नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, उसमें इतने गुण है, पर से तो भिन्न बताया है, वो उसमें भी भेद करके बहुत सारे अलग अलग धर्मों को समझाया, वो नित्य भी है अनित्य भी है इस तरह से, तो वो उसका परिज्ञान हुआ, तब जाके वो शिष्य आगे चलेगा, उसको आगे उसका निर्णय करके अपने में एकाग्र हो जाएगा। तो कहते कि यथार्थ परिज्ञान का निमित्त होने से मोक्ष का कारण है। यहाँ श्रेयस शब्द का अर्थ मोक्ष और अपदेश शब्द का अर्थ कारण है। ऊपर लिखा है ना, जो लास्ट लाइन में देखो 166 पेज के प्राकृत में, स एष याथात्म्य, याथात्म्य ने सही यथार्थ, याथात्म्य उपलब्धि निमित्तत्वात्, ये आत्मा का कोई संबंध नहीं, याथात्म्य ने यथार्थ, यथार्थ ज्ञान, उपलब्धि ने ज्ञान होना, यथार्थ ज्ञान के लिए निमित्त होने से भावानाम श्रेयो अपदेश, श्रेय ने मोक्ष और अपदेश कारण, यानी श्रेयसो मोक्षस्य उपदेशा कारणम। वहां पर मूल में उन्होंने बताया था कि श्रेयस है ने मोक्ष का, अपदेश है ने कारण। आगे लिखते हैं क्यों ऐसा कहा है, तो नए को जो मोक्ष का कारण बतलाया है उसका हेतु पदार्थों की यथार्थ उपलब्धि निमित्तता है, लाभधि वलब्धि करना। यथार्थ उपलब्धि है ने जैसी वस्तु है वैसा उसकी उपलब्धि हुए ने जाना उसने, और उसमें निमित्त कौन है, तो ये नए। तथा सार संग्रह में भी पूज्यपाद स्वामी ने कहा है अनंत पर्याय स्वरूप वस्तु की किसी एक पर्याय का ज्ञान करते समय श्रेष्ठ हेतु की अपेक्षा करने वाला निर्दोष प्रयोग नहीं कहा जाता है। क्या कहते हैं, वस्तु कैसी है तो अनंत पर्यायात्मक है, अब उसी किसी एक पर्याय का ज्ञान कराना है, किसी एक भेद का, किसी एक अंश का ज्ञान कराना है, तो श्रेष्ठ हेतु की अपेक्षा करने वाला निर्दोष प्रयोग। श्रेष्ठ हेतु क्या है, वो तो मोक्ष प्राप्ति का, शिष्य को समझाने का, ये समझाना हेतु नहीं है, वो मोक्ष की लिए उसको वो तो उपदेश दिया जाता है, वो निर्दोष प्रयोग है, वो प्रयोग में उपदेश को वो प्रयोग कहेंगे हम, वो नए कहा जाता है। अब शंकाकार पूछते हैं अभिप्राय युक्त प्रयोगकर्ता की नए संज्ञा भले ही हो, यानी जो ज्ञाती है, अभिप्राय किसका है, ज्ञाता का अभिप्राय है, तो ऐसा जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहे हैं ना, उपदेश दे रहा है, मान लेते हैं नयों से उसको स्वरूप बता रहे हैं, उसको नए भले ही कहो आप, किंतु प्रयोग की वह संज्ञा नहीं हो सकती। यानी प्रयोगकर्ता के लिए आप नए भले कहो, परंतु उस प्रयोग को नए क्यों कहते हैं, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि उसमें नित्यत्व आदि अभिप्रायों का अभाव है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि प्रयोगकर्ता के अभिप्राय को प्रकट करने वाले नयजन्य प्रयोग को भी कार्य में कारण का उपचार करने से नयपना सिद्ध है। यानी वो प्रयोग को भी हम नये कह सकते हैं। तथा समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है स्यादवाद से प्रकाशित पदार्थों के चाहिए, पदार्थों की पर्यायों को, उसकी पर्याय, चलो ठीक चल जाएगा, स्यादवाद से प्रकाशित पदार्थों की पर्यायों को प्रकट करने वाला नए है। इस कारिका, ये उसको कारिका कहते हैं, जैसे सूत्र होते हैं वैसे कारिकाएं भी होती है, उन्होंने ये वाक्य बताया ना, इसी को कारिका कह रहे हैं। क्या कहा, स्यादवाद से प्रकाशित पदार्थों की पर्यायों को प्रकट करने वाला नए है। इस कारिका के उत्तरार्ध में प्रयुक्त स्यादवाद शब्द का अर्थ कारण में कार्य का उपचार करने से प्रमाण होता है। उस प्रमाण से प्रविभक्त अर्थात प्रकाशित जो पदार्थ है उनके विशेष, ये सब न्याय की भाषा चल रही है आज तो, अर्थात पर्यायों का जो श्रेष्ठ हेतु के बल से व्यंजक अर्थात प्ररूपण करता हो वह नए है। व्यंजक का अर्थ हो तो प्ररूपण करता, और वो हेतु क्या है, श्रेष्ठ हेतु के बल से, यानी मोक्ष का ही हेतु उसके पीछे है। उपर्युक्त स्वरूप वाला वह नए दो प्रकार का है। देखो अभी ये नयों की चर्चा बताई, अभी तक नए क्या है उसकी बात यहाँ चली, अब नयों के प्रकार बताएंगे, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तो वह नए दो प्रकार का है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, जो उन दो उन पर्यायों को हुआ है, जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा अथवा प्राप्त हुआ है, वह द्रव्य है। देखो द्रव्य किसको कहते हैं? अनादि अनंत पर्यायों का समूह मोक्ष मार्ग स्वरूप प्रकाशक में आता है। द्रव्य क्या है? शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है ऐसा कहेंगे। पर्याय की तरफ से देखेंगे तो हर समय द्रव्य का अपनी अपनी एक अवस्था चल रही है, पर ऐसा कब से चल रहा है? अनादि से अनंत काल तक होता रहेगा। तो ये जो आता है ना, वो पर्याय के लिए प्राप्य शब्द भी आता है। द्रव्य उसको प्राप्त करता है। वो प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त, ऐसे तीन शब्द समय सार में आए, आपको याद होगा तो उसमें आता है। तो ये पर्याय क्या है? तो द्रव्य उसको प्राप्त करता है, या पूर्व में प्राप्त किया था, ये वर्तमान में कर रहा है। फिर से पढ़ते देखो, जो उन उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा या प्राप्त हुआ है, वो करता है के बदले हुआ है ऐसा शब्द प्रयोग आया, वह द्रव्य है। इस निरुक्ति से, ये एक निरुक्ति है, द्रव्य किसे कहना, तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य दोनों का ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वस्तु के दोनों प्रकार से भी उन पर्यायों को प्राप्त करना पाया जाता है। तद्भाव सामान्य का कहाँ हुई है? कुछ विशेषण नहीं है, एक मिनट है। दवि यदि गच्छति ताइम ताइम सद्भाव पज्जयाइम जम, सद्भाव लिखे ना, दवियम तम भन्नन्ते अन्नभूतं तु सत्ता दो अध्याय। इसमें कुछ बात अलग बताइए, क्या देखती हूँ मैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की बात है ना। सादृश्य सामान्य नहीं, वैसा का वैसा का वैसा, वो सामान्य, हाँ लिखा है वहां पर। अच्छा, क्या तद्भाव सामान्य ने स्वरूप अस्तित्व, तद्भाव सामान्य स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य सामान्य का अर्थ सादृश्य अस्तित्व। जैसे हम महासत्ता और अवांतर सत्ता की थी वैसा ही है। देखो इसमें कुछ भेद देखा है तो मैं देखती हूँ। स्वरूप अस्तित्व, देखो यहाँ विशेषार्थ में बताते हैं। जयधौला में है इस प्रकार, पेज नंबर 197 पर, एक्चुअली ये बहुत विस्तार से अभ्यास करने लायक विषय है। तद्भाव सामान्य सादृश्य सामान्य, उसकी बात करती हूँ मैं। इस प्रकार मैं अभी बीच में ही पढ़ रही हूँ। पूर्व में कहा गया द्रव्य जिस नय का विषय है वह द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्य को विषय करने वाला नित्य अंश को, तद्भाव लक्षण सामान्य से अभिन्न और सादृश्य लक्षण सामान्य से भिन्न और अभिन्न वस्तु को स्वीकार करने वाला द्रव्यार्थिक न है, यह पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य है। अभी उसी को विशेषार्थ में उन्होंने समझाया है। देखो प्रत्येक पर्याय का कोई ना कोई कारण है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न और कथनचित सत्रूप है। ऐसी पर्यायों का व्यक्त हो जाना ही उत्पाद है और तिरोभाव ही विनाश है। अतः वस्तु नित्य है तथा अभी ये तद्भाव सामान्य की बात यहाँ आ गई। तद्भाव सामान्य अर्थात एक ही द्रव्य की पूर्वोत्तर पर्यायों में रहने वाला ऊर्ध्वता सामान्य की अपेक्षा। तद्भाव सामान्य ने ऊर्ध्वता सामान्य कहा। उसी का अर्थ है एक ही द्रव्य की पूर्वोत्तर पर्याय में रहने वाला सामान्य, एक ही द्रव्य के पूर्वोत्तर पर्याय में रहने वाला सामान्य देखो एक ही द्रव्य के पूर्वोत्तर नहीं तद्भाव सामान्य उसी को ऊर्ध्वता सामान्य कहा। एक ही द्रव्य की पूर्वोत्तर पर्याय में रहने वाले ऊर्ध्वता सामान्य की अपेक्षा यानी तद्भाव सामान्य की अपेक्षा अभिन्न है। हाँ एक ही द्रव्य के द्रव्य की पूर्वोत्तर पर्यायों में रहने वाला सामान्य उसी को ऊर्ध्वता सामान्य कहा और उसी को तद्भाव सामान्य कहा। तद्भाव वैसा वैसा उसकी अपेक्षा अभिन्न है। और सादृश्य लक्षण सामान्य की अपेक्षा भिन्न और अभिन्न है। इस सादृश्य लक्षण सामान्य क्या कहा उन्होंने यहाँ पर देखो देखो तद्भाव सामान्य ने ऊर्ध्वता सामान्य और सादृश्य सामान्य ने तिर्यक सामान्य जिसको कहेंगे। यानी जो सामान्य समानता पाई जाती है दो द्रव्यों में उसको सादृश्य सामान्य कहा था। बहुत कुछ कठिन है, कल ही ज्यादा विस्तार से देखेंगे हम इसे। अभी मैं उसमें से भी अन्य पेज का रेफरेंस बताया था ना, वहाँ 235 पेज की बात ये कह रही हूँ। सादृश्य सामान्य का एक अर्थ होता है तिर्यक सामान्य। जय धवला पेज 235 यानी 197 पर वो 235 का रेफरेंस हमने लिख कर रखा था, वहां से मैं पढ़ के बता रही हूँ। हाँ परंतु यहाँ देखो उसी द्रव्य में वो ऊर्ध्वता सामान्य, परंतु ये सामान्य ने वो भिन्न में भी बताते अभिन्न में भी बताए। यहाँ हाँ यहाँ अभिन्न में भी और भिन्न में भी लक्षण बताया। सादृश्य लक्षण में वो भिन्न और अभिन्न दोनों बताया। हाँ जिसको हम कहते हैं ना वस्तु ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य होती वही बात है यहाँ पर वो प्रवचन सार में जो बताया है तिर्यक सामान्य कल प्रवचन सार में से भी देखेंगे जरा एक ऊर्ध्वता सामान्य और एक तिर्यक सामान्य देखो अभी थोड़ा समझ में आ रहा है ऊर्ध्वता सामान्य में क्या नहीं वस्तु वही की वही है पर्याय में विसदृशता होने पर भी वस्तु की जो नित्यता है उसको तिर्यक सामान्य कहा सॉरी ऊर्ध्वता सामान्य कहा तिर्यक सामान्य में वही की वही वस्तु है ना यानी वो तो अनंत गुणात्मक ऐसे वो तिर्यक सामान्य में ले लेंगे इसके लिए प्रवचन सार को भी जरा हम पढ़ेंगे कल पढ़ के आएंगे या पढ़ेंगे कल क्योंकि इतनी ऐसी वो तो अभी उसका विषय नहीं चल रहा है ना हमारा वहाँ तो मैंने अच्छा किया आज जयधोला निकाल के रखा था आज 10 मिनट पहले आई थी तो यानी वो वस्तु द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों है ये यहाँ बताना चाहते हैं यानी पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है और उसको व्यक्त हो जाना उत्पाद है तिरोभाव होना विनाश है और वस्तु नित्य है इस तरह से उसको बता रहे हैं ये विशेषार्थ में उन्होंने बताया वो मूल में भी तो उन्होंने लिया ही लिया है आज यही रुकते भी हैं पेज 198 का भी मैं 197-198 की बात अभी हमने पढ़ी जयदेवला की 197-198 और फिर 235 की भी बात बता की उन्होंने जो पेज नंबर लिखे हैं ना वो पुराने की होगी शायद हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसके नंबर अलग है अभी मैंने निकाल के देखा ना ये जो स्वरूप अस्तित्व लिखा है ना सादृश्य अस्तित्व उसमें ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य ज्यादा फिट हो जाता है ठीक है हम यही रुकेंगे ये जो नए दो प्रकार के यहां से कल फिर सुबह दोबारा पढ़ेंगे पेज नंबर 167 लास्ट पैराग्राफ वहां से शुरू करेंगे जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत मैं भाई